बीबीसी इंडिया बोल 30 जून शनिवार। मैं हूं आदर्श राठौर। विश्व कप फुटबॉल कब खेलेगा भारत? क्या क्रिकेट की लोकप्रियता ने भारत में फुटबॉल के खेल को दबा दिया है? क्या कारण है कि विश्व फुटबॉल में भारतीय टीम की कहीं गिनती नहीं होती? क्या है आपकी राय? आज बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। अपनी राय रखने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर। मेरे साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे फुटबॉल के मशहूर हिंदी कमेंटेटर गौस मोहम्मद। लेकिन उससे पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने सऊदी शाह सलमान को इस बात के लिए राजी कर लिया है कि वो बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएं। ट्रंप ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी कि उन्होंने शाह सलमान से कहा है कि वेनेजुएला और ईरान जैसे दूसरे देश तेल उत्पादक देशों के उत्पादन कम करने के कारण पैदा हुई स्थिति से निपटने के लिए सऊदी अरब प्रतिदिन 20 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करे। बीते महीने तेल निर्यातक देशों यानी ओपेक की एक बैठक में प्रतिदिन 10 लाख बैरल कच्चे तेल के उत्पादन पर सहमति बनी थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाने की योजना कर ईरान के लोगों को अपने ही नेताओं के खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन हालातों के बीच भी ईरान अपनी एकता बनाए रखेगा। लगातार बिगड़ती आर्थिक परिस्थिति के कारण बीते दिनों देश के व्यापारी वर्ग ने सरकार से विरोध जताया था। इधर अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मित्र देशों से कहा है कि वो ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद करें ताकि उस पर आर्थिक दबाव पड़े। बीते कुछ वक्त में ईरानी मुद्रा रियाल भी 40% तक गिर चुकी है। ऑस्ट्रिया के यूरोपियन यूनियन का नया अध्यक्ष बनने के बाद ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कूर्ज ने कहा है कि उनके इस 6 महीने के कार्यकाल में वो सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाएंगे। यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी लगातार थोड़े थोड़े वक्त पर बदलती रहती है और ऑस्ट्रिया से पहले इसकी अध्यक्षता बुल्गारिया के पास थी। इसके लिए आयोजित एक खास समारोह में कूर्ज ने कहा कि यूरोप के सभी देशों का विकास और उनकी सुरक्षा ही उनका ध्येय होगा। इस मौके पर यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने उनके इस बयान का उत्तर देते हुए कहा,
As our summit in the past days has shown, we are all working hard to...
हमारा सम्मेलन बीते कई दिनों से चल रहा है और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यूरोपीय यूनियन एकजुट रहे, स्थिर रहे और सुरक्षित रहे। सबसे पहले हमें हर मामले में एकजुट रहना होगा। अपने जीवन में कानून व्यवस्था और सुरक्षा तलाशने वालों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसकी कीमत आज़ादी नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इधर ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कूर्ज चाहते हैं कि प्रवासी संकट का समाधान तलाशने की दिशा में यूरोपियन यूनियन के बाहर ऐसे खास केंद्र बनाए जाएं जहां यूरोप आने वाले प्रवासियों को रखा जा सके ताकि यूरोप के देशों की सीमाएं सुरक्षित रहे। स्वाजीलैंड के LGBTQ समुदाय यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वीर समुदाय के लोगों का कहना है कि वो देश में पहली बार गे प्राइड मार्च का आयोजन करेंगे। उनका कहना है कि रूढ़िवादियों और धार्मिक समूहों से मिल रही धमकियों के बावजूद वो पीछे नहीं हटेंगे। स्वाजीलैंड में समलैंगिकता गैरकानूनी है लेकिन फिलहाल अधिकारियों ने इस आयोजन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। गे परेड का आयोजन करने वाले समूह रॉक ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता मेलुसी सिमेलिन कहते हैं कि ये बदलाव के लिए उठने वाला पहला कदम हो सकता है।
We're expecting people to come in their thousands, really. I'm telling people that I'm expecting at the very least...
हमें उम्मीद है कि हजारों की संख्या में लोग इसमें शिरकत करने के लिए आएंगे। मैं लोगों से कहता रहा हूं कि मैं चाहता हूं कम से कम 2000 लोग आएं। लेकिन अगर इतने लोग नहीं भी आ पाते तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिर हम सपने देखने के लिए आज़ाद हैं। रॉक ऑफ होप ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता मेलुसी सिमेलिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
नमस्कार, आपका स्वागत है बीबीसी इंडिया बोल में। मैं हूं आदर्श राठौर। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं 1811-7000 और 1811-7001 पर आप मुफ्त फ़ोन कर सकते हैं। फुटबॉल के जाने माने हिंदी कमेंटेटर और पूर्व गोलकीपर गौस मोहम्मद स्टूडियो में मौजूद हैं। विषय एक बार फिर बता दें, विश्व कप फुटबॉल कब खेलेगा भारत? क्या क्रिकेट की लोकप्रियता ने भारत में फुटबॉल के खेल को दबा दिया है? क्या कारण है कि विश्व फुटबॉल में भारतीय टीम की गिनती कहीं नहीं हो रही है? फिलहाल एशियन गेम्स, ओलंपिक और विश्व कप फुटबॉल समेत कई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में अपनी शानदार कमेंट्री से खेल को जीवंत बना देने वाले गौस मोहम्मद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम में श्रोताओं की टिप्पणियों को हम शामिल करें, आपसे जानना चाहेंगे गौस साहब कि वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले शुरू हो चुके हैं, भारतीय भी वर्ल्ड कप देख रहे हैं, लेकिन कोई अर्जेंटीना के लिए देख रहा है, कोई फ्रांस के लिए देख रहा है। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि कब तक भारतीय दर्शकों को भारत के लिए वर्ल्ड कप देखने का मौका मिलेगा?
देखिए, हर वर्ल्ड कप में हर चार साल बाद ये सवाल उठता है, और जहाँ तक और अन्य एक्सपर्ट कहते रहे हैं, मैं उनसे अलग राय रखता हूँ। मुझे लगता है हम कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि हम यूरोपियन कंट्री की नकल ना करें। हमारा भौगोलिक आधार, हमारा जो तरीका है, भिन्न है। यहाँ पर अगर आपको फुटबॉल में आगे जाना है तो पेशेवर लीग से ज़्यादा आपको तवज्जो ध्यान देना होगा इंस्टीट्यूशनल लीग पर। पहले जितने भी होते थे, चाहे वो एयर इंडिया हो, FCI हो, रेलवे हो, ONGC हो, इस तरह की बहुत सी टीमें थीं, और उनमें प्लेयर सेलेक्ट होते थे, और जो लोअर मिडिल या मिडिल क्लास के बच्चे, मेहनती बच्चे, वो सेलेक्ट होकर आते थे, और बंगाल के क्लब या मुंबई के क्लब या गोवा के क्लब ये देखते थे उनको, या राजस्थान से
जी,
और उसमें से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को चुनते थे, फिर वो अपनी नौकरी छोड़ते थे और पेशेवर खिलाड़ी बनते थे। यहाँ पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ आपको सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जहाँ जो बच्चों के माँ बाप हैं जब अपने बच्चे को लेके जाते हैं, क्यों क्रिकेट ने तरक्की की, क्योंकि वहाँ पर अगर आप 12 साल के लिए खेलते हैं, अंडर 14 खेलते हैं, अंडर 16, अंडर 19, जिस भी लेवल पर आप खेलते हैं, एक तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, और आपको कहीं ना कहीं पैसा अच्छा मिलता है, सुविधाएं बहुत अच्छी मिलती हैं, उनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी है
जी,
वो फुटबॉल में नहीं है
जी। अच्छा, आप इतने लंबे समय से फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, आप खुद भी खेलते रहे हैं, इतना लंबा समय हो गया, इस दौरान आप क्या देखते हैं कि फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं भारत में वो बेहतर हुए हैं, या फुटबॉल का जो स्तर है, जो खेल का स्तर है भारत में, वो सुधरा है, वैसा ही है, या थोड़ा डिग्रेड हुआ है?
देखिए, अगर आप देखिए, हमने दो बार एशियन गेम्स खेले हैं, ओलंपिक के भी सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, तो हम हमेशा अतीत को याद करके अपना समय व्यतीत करते हैं। पहले क्या था, हमें देखना है अब, और अब के हिसाब से भारतीय फुटबॉल में जो डेप्थ है उसको पैदा करना होगा।
जी जी जी। हमारे साथ दो श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें, क्या सोचना है आपका इस विषय पर?
हेलो
जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
मैं गुजरात से भरूच डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ, राम सेवक साहब मेरा नाम है
जी। राम सेवक जी,
जी मैं ये फुटबॉल के बारे में पूछता हूँ कि क्रिकेट इतना आगे है, हॉकी इतना आगे है, लेकिन फुटबॉल मेरे देश में कुछ का इसका कुछ नाम ही नहीं है।
जी जी, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है?
अभी विश्व कप हो रहा है, और विश्व कप भी मैं सुनता हूँ न्यूज इंडिया, लेकिन मैं बीबीसी का सुबह भी सुनता हूँ, और शनिवार को सैटरडे को बोल इंडिया बोल हमेशा मैं सुनता हूँ, बीबीसी का पुराना मैं सुनता हूँ
जी जी,
लेकिन ये फुटबॉल के बारे में अपना इंडिया का कुछ नाम ही नहीं है, कुछ आसानी नहीं है।
चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन एक और श्रोता हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
जी सर नमस्कार, हम बिहार से बोल रहे हैं सर, भूदेव कुमार यादव मेरा नाम है सर
जी।
जी हम बोल रहे हैं कि भारत में प्रतिभागियों में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ मैनेजमेंट होता है, कोई पार्टिकुलर से बच्चा जन्म लेता है, उस समय तो उसको पढ़ाई के प्रति या दूसरे क्षेत्र के प्रति बनिस्पत खेल या जिस भाग में जिस क्षेत्र में उनका प्रतिभा उस प्रतिभा झलकना चाहिए उस क्षेत्र में नहीं झलका के पार्टिकुलर किसी एक एरिया की तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। और मैनेजमेंट जिस तरह से होता है, खास करके फुटबॉल के लेके जिस तरह से व्यवस्था रहता है, जैसे प्ले ग्राउंड होनी चाहिए, जितना हम लोग क्रिकेट पे देखते हैं क्रिकेट पे ध्यान देते हैं, उतना एडवर्टाइज या उसका प्रचार फुटबॉल में नहीं कर पाते, जिसके कारण से भारत अभी तक फुटबॉल में सारा अरब आबादी होने के बावजूद भी अभी भी फुटबॉल में कभी क्वालिफाई तक नहीं किया है सर। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट की बहुत कमी है सर। टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट हो सकता है लेकिन मैनेजमेंट पर इतना यानी कि लचर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता सर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी रहने के लिए। जैसा कि ये हमारे श्रोता कह रहे थे कि प्रबंधन की थोड़ी एक, उनका ये भी कहना है कि खेलों के बजाय सारा जोर जो है वो पढ़ाई की तरफ हो जाता है, या जिस तरह से बाद में क्रिकेट की तरफ पूरा फोकस हो जाता है, इस पे भी हम आएंगे। लेकिन ये जो बात कह रहे थे कि स्कूलों में खासकर पढ़ाई पर जोर दिया जाता है, खेलों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्या इसका भी असर पड़ता है?
बहुत बड़ा असर पड़ता है। मैं इन दोनों के दर्द को महसूस कर सकता हूं, और गुजरात से बिहार से उन्होंने कॉल किया। इसका मायने क्या है कि हमारे देश में चारों तरफ फुटबॉल के फैंस हैं, हमें उनको मायूस नहीं करना चाहिए। सेप ब्लैटर जो फीफा के प्रेसिडेंट थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और खुद उनका इंटरव्यू किया था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि मैं जब हिंदुस्तान जाऊँगा तो मैं वहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनसे मिलूंगा, जो फुटबॉल की करता धरता है उनको मिलूंगा। यानी ब्लैटर को मालूम है कि जब तक शिक्षा यानी स्कूलों में खेल नहीं होगा तो फुटबॉल को लोकप्रिय ग्रास रूट पर नहीं बनाया जा सकता। और पहले हिंदुस्तान की फुटबॉल में जो स्कूलों का कंट्रीब्यूशन बहुत कंट्रीब्यूशन होता था स्कूलों का, नेशनल स्कूल गेम्स बहुत अच्छे होते थे और उसके बाद जोनल होते थे, बहुत ज़्यादा बच्चे स्कूलों और कॉलेजों से मिलते थे टैलेंटेड, वो बिल्कुल फिनिश हो गए, इनका कहना ठीक था।
जी एक श्रोता है हमारे साथ, जी अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
नमस्कार सर, हारून खान बात कर रहा हूँ फरुखाबाद से।
जी
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर सिस्टम में तो शुरुआत से कमी है स्कूलिंग लेवल से, ये बात तो सच कहा है गोस मोहम्मद साहब ने।
जी
कैसा होता है कि ये बजट पास होता है, सरकार पास करती है, उसके बाद जो अफसर लोग है वो खा जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी कमियां हैं, ठीक है। और कुछ खेल को जो है कुछ ज्यादा ही शो करके दिखाया जाता है, जैसे लाइक क्रिकेट है।
लेकिन ठीक है, हम आपकी बात कर रहे हैं, गौस मोहम्मद साहब आपसे जाना चाहेंगे, ये कह रहे हैं कि भाई क्रिकेट को ज़्यादा दिखाया जाता है, लेकिन क्या ये बात नहीं है कि क्रिकेट इसलिए ज़्यादा दिखाया जाता है लोगों की उसमें रुचि है, तो ये रुचि की जो बात आती है, ये इंटरेस्ट कहाँ से पैदा होता है? कि हम ज़बरदस्ती कोई खेल किसी पर थोप तो नहीं सकते जनता के ऊपर, जैसा कि सब खेलों का अगर कोई ना कोई अगर कोई लोकप्रिय होता है समय के साथ तो वो क्या वजह होती है उसकी?
देखिए ऐसा है कि मार्केटिंग एक बहुत
जी
जो मार्केटिंग है वो क्रिकेट की बहुत अच्छी है, छोटे लेवल पे भी, स्कूल लेवल पे भी, और जैसे जैसे एज से ग्रुप से आगे भी आते हैं उनकी मार्केटिंग भी अच्छी है, उनको पैसा भी अच्छा मिलता है और बहुत अच्छे तरीके से आयोजित किया जाता है। फुटबॉल में ये थोड़ा कमी है। हमें चाहिए पैशन, जुनून, फैशन नहीं चाहिए। अभी हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो फैशन से चल रहा है। हम दिखा रहे हैं हमारी इतनी एकेडमी है, हमारे यहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड आ रहा है, आर्सेनल आ रहा है, लिवरपूल आ रहा है, ये सब कुछ दिखा के हम लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर्षित कौन हो रहे हैं? जो अच्छे आर्थिक रूप से संपन्न परिवारों से जो बच्चे आते हैं वो आकर्षित होते हैं, और वो स्कूल लेवल पर अच्छे अच्छे एकेडमी जहाँ विज्ञापन दे के आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप इतने पैसे दीजिए और आप खेलिए, ये चीज़ पैसे लेने देने से नहीं होता है, जुनून भी चाहिए होता है
जी।
जो पहले होता था वो अब जुनून नहीं है। और ये जो बच्चे एकेडमी में खेलते हैं, ये जब कॉलेज में जाते हैं वहाँ जाके कैरियर ओरिएंटेड हो जाते हैं, परिवार का दबाव होता है तो वो फुटबॉल छोड़ देते हैं। यानी 80% बच्चों पर जो ध्यान दिया गया वो अगर कॉलेज में आके अपने कैरियर की तरफ चले जाते हैं और फुटबॉल को कैरियर नहीं लेते तो फ़ायदा नहीं होता। तो हमको ये देखना होगा, अपनी जो रणनीति ऐसी बनानी होगी कि जो ऐसे क्लास से बच्चे आए जो इसको कैरियर बनाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिले, बाद में वो पेशेवर बन सकते हैं।
जी हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर?
अब्दुल अजीज भट्ट बोल रहा हूँ जी, जम्मू के पुंछ जिला से।
जी
सर हमारा जो फुटबॉल के लिए प्लेयर की हमारी जरूरत है कि फिजिकली फिटनेस, इसमें कुछ इलाके ऐसे हैं कि बच्चे जो हैं वो जिस्मानी तौर से कमजोर होते हैं, और हमें ईस्ट के लोग या कोई नॉर्थ के या जैसे का लोग हैं, इनको छोटे बच्चों को हमें तैयार करना चाहिए, और इनकी पढ़ाई भी और इनका फुटबॉल भी एक जगह होना चाहिए।
जी शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ एक और श्रोता जुड़े हुए हैं। जी अपनी अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
नमस्कार बीबीसी।
जी नमस्कार।
सर बात चलिए फुटबॉल की, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी राय रखना चाहूंगा।
जी अपना नाम बताएं एक बार।
जी मैं राजेश वर्मा बोल रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश मंडी से।
जी
जैसे सभी देश हैं जी, सभी खेलों में एक तो आगे नहीं है। अब फुटबॉल का जनक बोला जाता है इंग्लैंड को, इंग्लैंड सिर्फ एक बार जीता है जो वर्ल्ड कप है। अब हमारे यहाँ पर क्या समस्या है, हमारा यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हॉकी है जबकि क्रेज क्रिकेट का है। फुटबॉल की सबसे बड़ी, ऐसा नहीं है कि फुटबॉल में क्रेज नहीं है, फुटबॉल में भी क्रेज है, बनेगा भी, लेकिन ग्राउंड नहीं है। आप क्रिकेट अपने आंगन में खेल सकते हो, गली में खेल सकते हो, फुटबॉल कहाँ खेलोगे आप? सरकार की तरफ से ना तो कोई नीति है। अगर लोगों को बोला जाए, जिस ढंग से हम, जिस पैशन से हम देखते हैं, हम हमारे बच्चे खेलेंगे भी उस पैशन से, लेकिन वो चीजें, वो सहूलियत, वो संसाधन तो उपलब्ध हों पहले।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपने रखने के लिए। जैसा कि ये राजेश कह रहे थे कि क्रिकेट हम अपने आंगन में खेल लेते हैं और ग्राउंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी खेल लेते हैं, और ये वो कह रहे हैं कि फुटबॉल के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, संसाधन, उनकी कमी, आप क्या सोचते हैं इस पर?
देखिए पहले ये बताऊँ कि ये मंडी से हैं, और मंडी में इनको मालूम होगा एक बस स्टैंड है, उसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है,
पड्डल ग्राउंड।
जी हाँ, वहाँ मैं खेला हूँ, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट, ऑल इंडिया टूर्नामेंट होता रहा है। और हिमाचल में आपको लगेगा नहीं कि ग्राउंड नहीं है, काफ़ी ग्राउंड हैं। पर इनका ये कहना ठीक है कि अगर हम स्कूल लेवल पर देखें तो ज़्यादातर स्कूलों में प्ले ग्राउंड, खेलने के लिए मैदान नहीं है। हमें उसके लिए सरकार पे के साथ मिलकर, जो फेडरेशन है, जो राज्य की इकाई हैं, उनको एक आपस में तालमेल करके इस तरह करना चाहिए कि जो वहाँ पे कॉलेज का ग्राउंड है या क्लबों का ग्राउंड है, ये फेडरेशन का ग्राउंड है, उसमें सारे जहाँ टैलेंटेड फुटबॉलर्स हैं उनको इकट्ठा करके स्कूलों को दो दो तीन तीन दिन अभ्यास कराया जा सकता है अगर नहीं है ग्राउंड। पर मेरे ख्याल से अगर आपके अंदर जुनून है तो ग्राउंड आप कभी भी ढूंढ लेते। जैसे इन्होंने कहा कि छत पे क्रिकेट खेल रहे हैं, गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वो, क्योंकि उनके अंदर जुनून है, उनको मालूम है अगर कुछ अच्छा करेंगे तो वो बेहतर, उनको सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पेशेवर क्रिकेट में बहुत पैसा है, और जिस तरह हिमाचल के अंदर भी देखिए धर्मशाला में कितना अच्छा क्रिकेट ग्राउंड है, अगर हम पूरे विश्व में नज़र डालें तो धर्मशाला का क्रिकेट ग्राउंड वन ऑफ द बेस्ट है। तो जब हम हर जगह क्रिएट कर सके हैं, उसके लिए ज़रूरी है जुनून क्रिएट करना। फुटबॉलर्स में भी वहाँ पे जुनून क्रिएट कीजिए, हॉकी में भी कीजिए, तो कोई चीज़ पीछे नहीं रह सकती अगर जो खेलने वाला है वो जुनून रखता हो। और ख़ास करके स्कूलों में जुनून पैदा करना पड़ेगा, उसके लिए ज़रूरी है, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनल लीग हमको करनी चाहिए, वहाँ स्पोर्ट्स कोटा होना चाहिए। हिंदुस्तान तरक्की करेगा, कोई नहीं रोक सकता। लोग जो कहते हैं कि कयामत तक हम वर्ल्ड कप नहीं खेल सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अपने सिस्टम को सुधार करें और हम बहुत जल्दी खेलेंगे, और 20 साल को नज़र में रखते हुए अपनी रूपरेखा तैयार करें।
जी हमारे साथ कुछ श्रोता जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें।
नमस्कार सर।
नमस्ते
सर, मैं हिमांशु बिनवाल, ग्राम बिनवाल गांव, पोस्ट ऑफिस चौड़ा मेहता, जिला चंपा, उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ सर।
जी बताएं
सर, हमारे यहाँ पहाड़ी है तो यहाँ जैसा कि क्रिकेट ही ज्यादा खेला जाता है, फुटबॉल में रुचि भी नहीं ली जाती है। यहाँ फुटबॉल को बहुत कम आका जाता है, विद्युत विहीन क्षेत्र है तो इस साइड केवल आकाशवाणी के जरिए ही हम सूचना से जुड़े रहते हैं, तो आकाशवाणी में क्रिकेट की कॉमेंट्री का आनंद तो ले सकते हैं, लेकिन फुटबॉल की कॉमेंट्री भी आकाशवाणी में बहुत कम बार प्रस्तुत होती है। और सर मैं एक्सपर्ट से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भारत, क्या भारतीय टीम को अर्जेंटीना, पुर्तगाल जैसी मजबूत टीमों के साथ खेलने का मौका नहीं मिल सकता?
जी ये इनका जो सवाल है, इनमें बहुत सारी इन्होंने बातें पूछी, आप एक एक करके अगर उनका जवाब दें तो।
देखिए ये उत्तराखंड से हैं और देहरादून का एक वक्त में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। अभी क्या है, उत्तराखंड के ज़्यादातर खिलाड़ी क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं और भारतीय टीम में भी जगह पा रहे हैं, और राज्य की, अलग अलग राज्यों की टीमों भी उनको स्थान मिल रहा है। इसका मायने क्या है, जुनून है, उन्होंने ढूंढ लिया, उन्होंने मैदान नहीं ढूंढा, अपना जो एक अपना जो जुनून है उसको पूरा करने के लिए वहाँ चले गए, क्योंकि वहाँ कुछ मिलेगा, लोगों को अपना भविष्य भी देखना है। क्योंकि सेक्रीफाइस करके आप फुटबॉल खेलते रहे और आपको कुछ हासिल ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ नौकरियाँ बिल्कुल बंद हो गई हैं, ये समझ नहीं रहे हैं। हमें ISL आई लीग हम करा करा के बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे पास ये आ रहा है वो जा रहा है करके हम बातें कर रहे हैं। असल चीज़, जब तक हमारे को स्पोर्ट्स कोटा ओपन नहीं होगा बच्चों के लिए, तो कैसे वो अपना भविष्य देखेंगे। क्रिकेट में ज़रूरत ही नौकरी की, अगर आप ISL खेल लिए या उनके टीम में भी आ गए, आपको इतना पैसा है कि आपको पूरी लाइफ में आप रिटायरमेंट तक भी आपको उतना तनख्वाह नहीं मिलती अगर हम जोड़ करें तो
जी।
तो ये है वहाँ पर।
हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें, क्या सोचते हैं आप इस विषय पर।
हेलो
जी।
हाँ, हमारा सार सबमिशन है ये जो ये क्या नाम है गौस मोहम्मद साहब कह रहे हैं
जी।
और ये इन्होंने मतलब बहुत नर्व पर पॉइंट रखा है, और ये जितने उसकी कमी है उसको इन्होंने बड़े समझदारी से इंगित किया है। हमारा साहब इसमें केवल इनसे एक डिफरेंस है कि जो खेल का सिद्धांत है वो ये है कि जहाँ स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही स्वस्थ ये क्या नाम है वो रहेगा
जी।
तो बच्चे जब खेलते हैं और उनके अंदर ही उसी तरह का ये क्षमता डेवलप होती है। अब जब स्कूलों के अंदर इस तरह का ये क्या नाम है उनको ये नहीं दिया जाता है और केवल किताबी ज्ञान और उस पर और उनको कंपटीशन और ये, तो ये चीजें मतलब उसी की तरफ चली जा रही। तो जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है
जी,
वो बहुत जरूरी है स्कूलों कॉलेजों और ये यूनिवर्सिटीज के अंदर
जी। आपने और, अपना नाम आप अपना नाम बताएं। आपने नाम,
मेरा नाम मैं माफी चाहूंगा साहब, मेरा नाम शंभु शरण है
जी, शंभु शरण जी।
यहाँ और मैं छत्तीसगढ़ में मतलब कोल इंडिया में था, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के अंदर भी प्रोफेसर रहा हूँ
जी जी जी।
तो, हाँ तो हाँ तो और हमारा मतलब बहुत ये क्या नाम है यूपी के अंदर बहुत रिमोट के अंदर घर, वहाँ हम लोग फुटबॉल ये क्या नाम है ग्राउंड स्कूल के अंदर फुटबॉल ग्राउंड होते थे और उसमें हम लोग खेलते थे, और उस समय जो घास वास का कॉन्सेप्ट था, अब ये जो टर्फिंग वर्फिंग का और उस पर ये कालीन वालीन उसको इतना स्पोर्ट्स को कास्टली बना दिया गया है, वो सब चीजें पूरा का पूरा इफेक्ट कर रहे हैं
जी। बहुत बहुत जी शंभू जी, आपने जो अपनी बात रखी जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये किसी वक्त खेला करते थे और आज वो एक कल्चर भी नहीं देखने को मिलता है आस पड़ोस में। बच्चे फुटबॉल छोड़ी आजकल मतलब खेलों के प्रति उनकी उतनी दिलचस्पी रही नहीं है, ऐसा देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं सिर्फ ये बात सिर्फ ऐसा नहीं कि फुटबॉल को लेकर ही चिंता है, कुछ और खेल हैं, हॉकी की जो भी दशा है वो कुछ अच्छी नहीं कही जा सकती, तो ये वक्त के साथ क्या जैसे हम उम्मीद जता रहे हैं कि बेहतर होंगी, लेकिन क्या ये ठीक उसका उल्टा नहीं होता जा रहा है।
देखिए शंभू जी ने जो कहा उसमें सबसे अलग बात वो उन्होंने ये कही कि आजकल आर्टिफिशियल सरफेस लगाया जा रहा है जहाँ पे हर एक के लिए फिर खेलना मुमकिन नहीं है, जो खेलेगा तो उसके लिए पैसा किराया देना पड़ेगा तब जाके खेलेगा, यानी वो उनके लिए हो गए जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिस वगैरह हैं वो अपना फैशन के तौर पे आते हैं खेलते हैं, उनको तो आसानी से मिल जाते हैं बिकॉज वो रेंट दे पाते हैं, पर असल चीज़ जो स्कूलों की है उसमें ज़रूरी है, सरकार ही कर सकती है, वो फेडरेशन के पास, हमारे तो सारे ग्राउंड कॉरपोरेशन के होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर किसी क्लब का अपना ग्राउंड है ही नहीं अगर आप दो चार को छोड़ दें। अगर आई लीग के रूल देखें उसमें है कि हर क्लब का अपना ग्राउंड होना चाहिए, तो हमको झूठ लिखना पड़ता है कि ये हमारा ग्राउंड है, एसोसिएट करते हैं, तो हमको ये जो क्लब जो ग्राउंड है ये सबके लिए होने चाहिए, और पहले कोशिश हुई थी लेकिन फिर बंद हो गई।
हमारे साथ कुछ और श्रोता जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और साथ में अपने विचार रखें।
हेलो
जी।
हाँ, नारायण भारती आजमगढ़ से
जी। नारायण जी
जी सर, मैं 80 साल का बूढ़ा हूँ, जब मैं पढ़ता था
जी
तो कॉलेज देहात में रहता हूँ, तो बड़े बड़े जो भी कॉलेज होते थे बड़े बड़े मैदान रहते थे, अब इतने स्कूल खुल गए हैं कि घर में गली में स्कूल है, बच्चे हर समय पढ़ना चाहते हैं, खेलना बिल्कुल उनको मौका नहीं मिलता। हम लोगों के जमाने में खेल का घंटा होता था, अनिवार्य रूप से बच्चे जाकर खेलते थे, अब सरकार की नीयतें नहीं है, रोज गली कूचों में स्कूल खुल रहे हैं, कहाँ खेलेंगे लोग।
जी बहुत बहुत शुक्रिया, जैसे आपकी बात पे भी बात करेंगे। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
हेलो, नमस्ते सर।
नमस्ते,
मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर, कर्नाटक से मुर्तजा बोल रहा हूँ सर।
जी जी बताएं।
सर अभी जो आपका जो चला फुटबॉल के बारे में चला हुआ है सर, हमारे भारत के अंदर बिल्कुल शौक नहीं है सर फुटबॉल का।
आपको लगता है कि बिल्कुल शौक नहीं है?
हाँ, शौक नहीं है सर। साथ साथ सर हमारे सरकारें भी जो आते हैं वो भी साथ नहीं देते सर।
जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। इन्होंने जैसे कहा कि भाई सरकारों की तरफ से नहीं होता, सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार की क्या भूमिका इसमें हो सकती है?
भारत एक ऐसा देश है जहां सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्राउंड सारे उन्हीं के पास होते हैं, अधिकार उन्हीं के पास होते हैं। और ये जो अभी कर्नाटक से हमारे पास फोन आया था, इसके अंदर आप देखिए कि कर्नाटक यानी बेंगलोर का स्टैंडर्ड फुटबॉल में सबसे बेहतर था। जो भारत की टीम बनती थी वो हैदराबाद कर्नाटक से ही बनती थी, और उसके बाद बंगाल के खिलाड़ी शामिल होते थे, राजस्थान से खिलाड़ी शामिल होते थे, देहरादून के खिलाड़ी होते थे, और यहाँ तक कि नागालैंड से भी एक दो खिलाड़ी अच्छे निकलते थे। तो हमारा फैंस की कमी नहीं है, हमको अपनी प्लानिंग सही बनानी होगी। जो ये सपना हम देख रहे हैं इसको साकार करने के लिए सरकार को अपनी जो स्कूलों की रणनीति है उसमें नीति है उसके अंदर प्रोत्साहन देना होगा। अगर बच्चा खेलेगा तो हमको उसको अंक देने होंगे, और अपनी जो ये हमने पढ़ाई का सिस्टम में थोड़ा इजी लाना पड़ेगा उसको, ऐसा नहीं हमें पैनिक नहीं बनाना पड़ेगा।
जी एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, अपना नाम बताएं और अपनी बात रखें।
जी सर, मैं नमस्कार सर।
नमस्ते,
मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बलराम से बोल रहा हूँ सर।
जी
ठीक है सर, फुटबॉल के बारे में बोलना चाहता हूँ सर कि
जी बोलें।
यहाँ पर ठीक ठीक है सर, यहाँ क्या है कि सरकारी मुलाजिम जितना है ना सर, उनकी उनको मैं दोस्तदारी सहराता हूँ यहाँ पर तो।
जी
क्योंकि मेरे यहाँ पर फुटबॉल का मैदान कहीं पर नहीं है, मेरे यहाँ आसपास के मेरे डिस्ट्रिक्ट के लोग 4 बजे सुबह उठते हैं सर। ठीक, 4 बजे से खेलना शुरू करते हैं, 7 बजे उन लोग घर आते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चयनित जो भी होगा, जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर का हो, यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पे जो भी मुलाजिम है वो दोस्तदारी है सर, यहाँ पर पहचान नहीं कर पाते हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि ये कह रहे हैं कि लोगों में जुनून है वहाँ पे कि सुबह उठ के वो खेल रहे हैं, और जो चयन होता है तब उसमें वो कहीं रह जाते हैं। एक ये चीज़, और एक साथ ही हमारे एक और श्रोता ने बात कही थी कि हमारे जब भी टीमें हैं, उनका कहना था कि हम उत्तर पूर्व के जो प्रदेश हैं हमारे, वहाँ के जो भी लड़के हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करें। तो आप उनकी राय से सहमत हैं? क्या हमें उधर ही सोचना चाहिए या हमें तो पूरे प्रदेश या पूरे सभी प्रदेशों को के लोगों का टैलेंट निकालना चाहिए?
देखिए बेसिक चीज़ है प्रतिभाशाली, उसके लिए हम एक जगह चले जाएं तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, अगर इधर से उधर जाने में भी वक्त लगता है। और एक टाइम तो ऐसा था कि जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते थे तो रेल में इतना टाइम बीत जाता था कि शक्ल नहीं पहचान में आती थी जब वो स्टेशन पे उतरते थे, जब तक मुंह ना अपना पानी से साफ कर लें। तो अब तो खैर बहुत सुविधाएं हैं, अब हवाई जहाज से आते जाते हैं। और रही बात ये जुनून वाली, ये जुनून को सरकार और फेडरेशन को पकड़ना चाहिए। जो सुबह 4 बजे से उठ के निकलते हैं, 7 बजे तक रहते हैं, वहाँ पर प्रतिभा तलाशनी चाहिए, क्योंकि हमको ज़रूरत ही जुनून की है, फैशन की नहीं है। तो इसीलिए सरकार को ऑल आउट जाके अपनी स्कूल की शिक्षा नीति में खेलों को, खास करके टीम गेम फुटबॉल और हॉकी को ऐसे जोड़ देना चाहिए कि यकीन मानिए कि हमारे अंदर दम है वर्ल्ड कप खेलने का। टूनिशिया, सऊदी अरब, ये सब जो खेल रहे हैं एशियन गेम्स में, एक ज़माने में टूनिशिया अभी ये तरक्की किया या सऊदी अरब खेल रहे हैं, ये हमारे साथ कंपीट भी नहीं कर पाते थे।
जी जी, एक बहुत छोटा सा सवाल चलते समय बहुत कम है। सवाल यह है कि कुछ टिप्पणियां ऐसी भी आई हैं, वो कह रहे हैं कि भारतीयों के पास फुटबॉल खेलने के लिए शारीरिक क्षमता नहीं है यूरोपियन खिलाड़ियों के मुकाबले, तो कुछ कह रहे हैं कि यहाँ का वातावरण जो है वो अनुकूल नहीं। आप जल्दी से संक्षिप्त टिप्पणी इस पर, क्या आप सहमत हैं इससे?
हमारा वातावरण बिल्कुल अनुकूल है। अगर हम केंद्रित करें, राजस्थान के अंदर कितने अच्छी हाइट वाले खिलाड़ी निकलते थे, यूपी से स्किलफुल निकलते थे, उत्तराखंड से निकलते थे, हैदराबाद से निकलते थे, बेंगलोर जहाँ से वो फोन आया था यहाँ सबसे निकलते थे। हमें हर जगह जो एकेडमी है वहाँ पर सिर्फ उन्हीं को लेना चाहिए जो लोकल हों, ये नहीं कि एक ही एरिया के बच्चे सब जगह एकेडमी में घूमते हैं। हमारे पास प्रतिभा है, ताकत है, और कोई वजह नहीं कि हम ना खेल पाए।
बहुत बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद। उन सभी श्रोताओं से क्षमा चाहेंगे जिन्हें समय कम होने के कारण हम अपने कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। बीबीसी इंडिया बोल में आज इतना ही, अगले शनिवार को नए विषय के साथ हाजिर होंगे। सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।